नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलती जा रही हैं, जिससे लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल सहित पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इस बीच इंडियन ऑयल ने कहा है कि कंपनी वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित कर रही है। कंपनी ने ग्राहकों को एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए एसएमएस और आईवीआरएस जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कंपनी ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए एलपीजी वितरकों के अचानक निरीक्षण करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि पर्यटन निगम की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में निगम ने अपने टर्नओवर में लगातार वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में निगम का टर्नओवर 78 करोड़ रूपये था, जो अब बढ़कर 100 करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गया है। बाली ने बताया कि इसके अलावा आय में सुधार के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
हमने 24/7 टूरिज्म का एचपीटीडीसी का कॉल सेंटर बनाने का कल मेरी अध्यक्षता में जो बीओडी की मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया। हमने दूसरा निर्णय एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का लिया, ताकि जिस तरह एचआरटीसी में फ्लाइंग स्क्वाड होती है कि वो चेक करती है कि टिकटें कटी हैं कि नहीं कटी, वैसे हमारी फ्लाइंग स्क्वाड ये चेक करेगी कि रूम जो लगे हैं उनके बिल कटे हैं कि नहीं कटे, क्या वो रूम सही लगे हैं कि नहीं लगे। अगर मैंने ये 78 करोड़ के टर्नओवर को 110 करोड़ हमने पहुंचाया है तो उसके ऊपर बहुत प्रयास हुए। हमने अपने खर्चों को कम किया है, अपने परचेज को हमने सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को दिया, हमने मेक माई ट्रिप जैसी पोर्टल सेवाओं से टाइप किया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल उपमंडल की कोट काइना पंचायत में 2 संपर्क सड़कों का लोकार्पण किया। इनके निर्माण पर 1.35 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। एक जनसभा में रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क व भवन निर्माण के लिए 550 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और विभिन्न विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में 171 नई सड़कों का निर्माण हुआ है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को खुला संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक व प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार इन चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार बीते 3 वर्षों में जनहित में कोई कार्य नहीं कर पाई है।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये सरकार अपनी संभावित हार को देखकर, क्योंकि 3 साल इस सरकार ने जनहित में कुछ किया नहीं, ना विकास किया ना जनहित की योजनाएं बनाई, उल्टा विकास कार्य रोक के जनहित योजनाएं बंद की, जनता को फेस करने की स्थिति में सरकार के लोग नहीं, इसलिए इस तरह के जो निर्णय सरकार ले रही है उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राज्य सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट करार दिया है। घुमारवी में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राजेश धर्माणी ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके तय समय में निपटारे के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।